ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय कल योग दिवस के अवसर पर देशभर में 100 पर्यटक स्थल और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। वे राष्ट्रपति पार्क का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इसराइल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष से 972547520711 और 972543278392 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इस बीच ईरान और इसराइल के बीच पिछले 7 दिन से जारी युद्ध और तेज हो गया है। इसराइल ने कल तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने दक्षिण इसराइल में अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया। दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। हाल के इतिहास में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव का ये सबसे भीषण दौर है। इसराइली सेना ने कल तेहरान और कराच में सरकारी प्रतिष्ठानों तथा पयाम हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमले किए। ये हमले दक्षिणी इसराइल के बीरशेबा में सरोका अस्पताल पर ईरान के हमले के बाद किए गए। ये अस्पताल इसराइली सैनिकों के उपचार के लिए प्रमुख स्थल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज सिक्किम से शुरू हो रही है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला से 36 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना करेंगे। पर्यटन और नागर विमानन अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने बताया कि सुचारू यात्रा संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
After a break of 6 years, again the team, first batch of Yatri to Kailash Manasarovar, they are going to start our Indian border from Nathula. So for their Yatris, immigration, all the facilities, all the arrangements have been made. Definitely that will be a very successful program.
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। मलेशिया में एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत के वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेंथिल कुमार ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के जोआचिम चुआ को हराया और लगातार दूसरी बार एशियाई चैंपियनशिप के अंतिम 4 में पहुंच गए। सेमीफाइनल में उनका सामना हांगकांग के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाउत्स क्वान से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का स्वागत किया है और इसे वैश्विक शिक्षा तथा अनुसंधान में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण बताया है। कल जारी QS वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।